ओम शांति। सभी ज्ञान सरोवर में अनेक प्रकार की विधियां सीख रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनाने के लिए अनेक विधियां बताते हैं। लोगों ने तो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारे नए नए प्रकार के प्रयत्न किए, उन्हें रिद्धि सिद्धि मिल जाती और रिद्धि सिद्धि के फलस्वरूप आप लोगों ने देखा होगा, कोई आग पर चल के दिखा देते हैं, कोई पानी पर चल के दिखा देते हैं, कोई हवा में उड़ के दिखा देते हैं, कोई किसी चीज का परिवर्तन करके दिखा देते हैं, रूप बदल करके। ऐसी सिद्धियां कुछ एक को प्राप्त हो जाती हैं। और वैसे भी दुनिया में कहते हैं चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं। कोई हाथ से भभूत निकाल दे, कोई ऐसी चीज निकाल के आपको दे दे, आप खुश हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे कि फलाने तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, महात्मा हैं, इन्होंने हमें भगवत दी और मेरी बीमारी ठीक हो गई, सिद्धि मिल गई। लेकिन बाबा हम बच्चों को ऐसी रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाता। कहता बच्चे तो टेम्परेरी है और किसी का भला है तो किसी का नुकसान है। आप बच्चों को तो मैं ऐसी सिद्धियां देता हूं जो पूरे आधा कल्प के लिए सब प्राप्तियां भरपूर हो जाती, संपन्न हो जाती। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीनों वरदान बाबा से संगम युग पर हम बच्चों को प्राप्त हो जाते हैं। लौकिक जीवन के अंदर आज की दुनिया में अगर कोई को अच्छी हेल्थ है, स्वास्थ्य अच्छा है, तन अच्छा है, तो आप देखो उसके पास धन नहीं है। किसी के पास धन बहुत है तो तन काम नहीं करता, और तन और धन दोनों अच्छे हैं, सबके पास हैं, तो कितना गम है, चिंता है, टेंशन है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, खुशी नहीं रहती। तो कलयुग के अंदर ये तीनों चीजें किसी को प्राप्त नहीं है। संगम पर बाबा अपने बच्चों को बहुत सूक्ष्म रीति से तन को भी निरोगी बना देते। आज भी बाबा कह रहे थे मैं नेचर क्योर कर देता हूँ। नेचर क्योर हो गई है ना सबकी, नेचर क्योर, उसकी विधि क्या बताई? याद की यात्रा में रहो, सेवा में बिजी रहो। जो याद की यात्रा में रहते हैं, सेवा में बिजी होते हैं, उनकी नेचर की ओर हो जाती है, तबीयत ठीक हो जाती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये विधियां हैं। लेकिन कई बार हम सिद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, सिद्धि माना सफलता, लेकिन उस सफलता के लिए, उस सिद्धि प्राप्त करने के लिए विधियों पर ध्यान नहीं देते। और बाबा के जितने भी वरदान आप सब सुन रहे हो मुरली के अंदर, उसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज के लिए बाबा ने भाव शब्द का प्रयोग किया है कि ऐसा हो जाए, ऐसा बन जाओ, तो उसके लिए कोई विधि बताइए। बिना विधि के कोई भी प्रकार से बाबा ने ऐसे नहीं तथास्तु कह दिया और हो गया। अगर विधि को कोई ने यथार्थ रीति से समझ लिया तो सब प्रकार की सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती। जैसे हम सब योग में बैठते हैं तो योग यथार्थ युक्ति युक्त जैसा बाबा चाहता है ऐसा योग बच्चों का बाबा के साथ लगा रहे, उसकी विधि बताई। क्या विधि बताई? क्या विधि बताई? अपने को आत्मा समझो, पहले अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब तक आप आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, कितनी भी बातें अंदर अंदर करते रहो, बाबा के साथ का, उनके मिलन का, उनकी शक्तियों का अनुभव नहीं होगा। तो कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम सबको यथार्थ विधियों को पहचानना है और उन पर चलना है। कहते हैं जितना कायदे पर कोई चलता है, विधि माना कायदे, विधि माना नियम, जितना कोई कायदे पर नियम पर चलता है उस कायदे से उसको उतना फायदा मिलता है। अगर नहीं चलता है, जैसे आप डॉक्टर कहते हैं हमारे पास यहाँ कैड का प्रोग्राम चलता है, तो हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर आप ये विधि पूर्वक 6 मास तक खान पान की जिस तरह से मैं परहेज बताता हूँ वो करो, उसी तरह से एक्सरसाइज करो और उसी तरह से मेडिटेशन करो, तो गारंटी है आपको हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, आपकी बंद आर्टरीज ओपन हो जाएंगी और जो जितना पालन करेगा उतना उसको प्राप्ति होगी, फायदा होगा, नहीं करेगा तो वो जाने। तो वो बहुत सारे नियम बना करके दिए, विधियां बताई हैं, ये इस विधियों को अगर आप पालन करोगे तो आपको ये सफलता प्राप्त हो जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। ऐसे ही बाबा ने भी हम सबको जो कुछ संगम ऊपर पढ़ाया है उस पढ़ाई में हमें सब प्रकार की विधियां मिली हैं और जिस ब्राह्मण आत्मा ने उस विधियों को यथार्थ रीति से समझा, उस पर उसी तरह से चला है, उसका जीवन बहुत सुखदायी, सब प्रकार से भरपूरता का वो अनुभव करता है। अगर किसी भी प्रकार से कोई नियम का विधि का उल्लंघन कर रहा है और कहे इनको ज्यादा मिल रहा है मेरे को कम मिल रहा है, इनकी बहुत ऊंची स्थिति है मेरी स्थिति नहीं बन रही है, तो इसमें देने वाला दाता का दोष नहीं है, वो तो सब बच्चों को समान रूप में एक जैसा खजाना देता। मैं कभी कभी सोचता हूँ आज 85-86 साल की हमारी दादियाँ बुजुर्ग हो गई, वही मुरली वो अभी भी पढ़ रही हैं, आज 6 महीने का स्टूडेंट है वो भी वही मुरली पढ़ रहा है। मुरली सबके लिए एक जैसी है, पढ़ाने वाला एक जैसा है, पढ़ाई की सब्जेक्ट भी एक जैसी सबके लिए है, लेकिन उसके आधार से नंबर कितने अलग अलग बन रहे हैं। कोई तो अष्ट की माला में आ रहा है, कोई 108 की माला में आ रहा है, कोई 16,000 में आएगा, कोई 9 लाख में आएगा और कोई तो दास दासी प्रजा कहाँ का कहाँ चला जाएगा। पढ़ाई एक ही है। सत्युग और त्रेता में जो भी पद प्राप्त हुए हैं उसका आधार है संगम युग की पढ़ाई। जितना जिसने इस पढ़ाई का अपने जीवन में स्वरूप बना है, उसको धारण किया है, उतना उसकी इस जीवन इस संगम पर महान बन गई और उसी आधार से उसको पद प्राप्त हो गया। सुन लिया, दूसरों को सुना लिया, वर्णन कर लिया, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बना, उसको अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, तो उसके अनुसार उसका पद हो जाता है। इसलिए पढ़ाने वाला एक है, सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, सबको खजाना एक जैसा दिया है, लेकिन विधियां जिसने यथार्थ रीति से यूज की। अब पढ़ाई को जीवन में समाने की विधि क्या बाबा ने बताई है? पढ़ाई को जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसको शक्ति का रूप तभी दिया जा सकता है जब भोजन अच्छी तरह से चबा करके धीरे धीरे खाया जाए, उसको पचाया जाए, उसको हजम किया जाए, तब वो ब्लड का रूप शक्ति का रूप लेता है। ऐसे ही बाबा ने तो हम सबको बहुत कुछ पढ़ा दिया। कभी कभी ऐसे लगता है, एक दो विदेश की बहनें मेरे को लिखती हैं पत्र कि राजू भाई बहुत ज्यादा हैवी डोज मिल रहा है इस समय मुरलियों के माध्यम से, आप एक तरफ वरदान भेज रहे हो, स्लोगन भेज रहे हो, अव्यक्त इशारे भेज रहे हो, फिर कभी मम्मा की मुरली, कभी दादियों की मुरली डायरेक्टर, बहुत कुछ मिल रहा है, सुना देते हैं, सुन लिया सभी ने, लेकिन कई बार ऊपर से चला जाता है, उसका स्वरूप नहीं बनते, उसका चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। तो मैं कहता हूं अच्छा इतना खजाना मिला है, कुछ तो हजम करो, 10% 15% भी 20% भी उस पर मनन करो, चिंतन करो। इतनी सारी बातें बाबा ने वरदान में, स्लोगन में, मुरली में बहुत कुछ दे दिया। आज ऐसे निर्भय बनने के लिए क्या कहा? एक बात तो याद रहेगी ना, निर्भय बनने के लिए क्या कहा, किसको याद है? एक माता हाथ उठा, इतने लोगों में से एक ही उठा रही है, क्यों बोला? आप सुन नहीं रहे थे क्या? निर्वैर, वैर विरोध नहीं है तो किसके साथ क्यों भय रहेगा? मेरा किसी से वैर नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं। तो बाबा ने कहा अगर निर्भय बनना है तो निर्वैर, कोई से वैर विरोध नहीं। ये विधि है, ये विधि बाबा बता रहे हैं कि अगर निर्भय रहना है तो इस विधि को अपनाना। इस संसार में आज सबसे ज्यादा अधिक भय मौत का है, लोग डर रहे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। कोरोना ने तो खूब अच्छे तरह डरवाया सबको। आप लोग डरे तो नहीं ना, निर्भय है ना सब, कुछ भी हो। लेकिन उस भय मुक्त स्थिति के लिए बाबा ने विधि क्या बताई है? क्या विधि बताई? बच्चे इस विधि को अपनाओ कि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं तो मरती नहीं हूं, जलती नहीं हूं, कटती नहीं हूं। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में आप स्थित रहोगे उतना आप मौत के भय से मुक्त हो जाओगे। ये विधियां हैं। अब ये सब विधियों को जिस आत्मा ने जितना अपने स्वरूप में लाया है, चिंतन किया है, जैसे आज विधि बाबा ने बताई, बच्चे तीन बिंदियों का तिलक लगा लो, आपकी स्थिति अचल अडोल एक रस बन जाएगी। वरदान था ना, अचल अडोल एक रस स्थिति भव बाबा ने कह दिया। लेकिन बच्चों ने समझा बाबा ने मुझे कह दिया और मैं बन जाऊंगा, ऐसा बन जाएंगे क्या? उसकी विधि बताई। और उसकी ये विधि बताई कि ड्रामा के अंदर जो सीन चल रही है वो ड्रामा बिंदु है, फुल स्टॉप लगा दो। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया तो क्यों, क्या, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अनेक प्रश्नों में आप उलझ जाएंगे और अनेक प्रश्नों में उलझते ही आप हलचल में आ जाएंगे, आपकी अचल स्थिति डगमग हो जाएगी। इसलिए तीन बिंदियों का तिलक लगाओ, मैं आत्मा बिंदी हूं, मेरा बाबा बिंदी है, और उस ड्रामा के अंदर जो सीन सामने आ रही नथिंग न्यू, कोई नई तो चीज है ही नहीं, 5000 साल पहले वाली रिपीट हो रही है। क्यों हम हलचल में आए, क्यों प्रश्नों में उलझ जाए, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, इसने ये किया, उसने वो किया। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान को स्वरूप में लाया है तो उस ज्ञान स्वरूप स्थिति का आधार है प्रसन्न चित्त स्थिति, कोई भी प्रश्न नहीं। अगर मन के अंदर बहुत सारे प्रश्नों का अंदर 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 गुब्बार भरा हुआ है, क्वेश्चन उठते रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है वो है, बाबा कहता है ये है व्यर्थ संकल्पों की क्यों। और इस व्यर्थ संकल्पों की क्यों को अगर समाप्त नहीं किया किसी ने तो समर्थ नहीं बन सकता। समर्थ बनना एक सिद्धि है, हमारी स्थिति समर्थ हो, शक्तिशाली हो, और उस शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए हम सबको क्या करना होगा, व्यर्थ से मुक्त रहना पड़ेगा। क्योंकि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म हमारी बहुत सारी शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे जो कुछ ड्रामा के अंदर देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहा है, उसमें प्रश्नात्मक बुद्धि न रख करके फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, क्वेश्चंस में नहीं जाओ। अगर क्वेश्चन में कहे तो हलचल होगी, स्थिति डगमग हो जाएगी, क्यों, क्या, कैसे में उलझ जाओगे। तो बाबा हम सब बच्चों को जो कुछ पढ़ा रहे हैं, मैं यही कहता हूं, सारी पढ़ाई विधियां हैं और पढ़ाई के द्वारा जो प्रारब्ध मिलती है वो सिद्धि है। बाबा ने हम सबको जो पढ़ा रहा है, पढ़ाया है, जिस आत्मा ने उस पढ़ाई के हर विधि को यथार्थ समझ लिया, जैसे आज हम भगवान से कोई चीज मांगते हैं, बाबा हमको मदद कर दो। अब बाबा कहता मेरे तो इतने सब बच्चे, चाहे आप ब्राह्मण बच्चे मेरे बच्चे हो, चाहे अज्ञानी बच्चे हैं, सब मेरे ही हैं, और मैं एक को करूं दूसरे को न करूं तो मैं भी पक्षपात कर लूं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं एक विधि बताता हूं, एक नियम बताता हूं, अगर इसको कोई भी पालन करे, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, और जितना उस पर ध्यान देगा उसको भगवान की मदद मिलेगी, उसकी दुआएं मिलेंगी। कौन सा नियम बताया? भगवान से मदद लेने का नियम, विधि बोलो। तो आप लोग तो सुनते हो ना, मुरली नहीं, उसकी विधि है हिम्मत। बाबा कहता बच्चे कभी भी भगवान से मदद मांगो मत, लेकिन तुम अपना एक कदम आगे बढ़ा दो, एक कदम आगे आप आओ, बाबा हजार गुना मदद करने के लिए बंधा हुआ है, यही बाबा आपके लिए। लेकिन विधि यथार्थ है, तो इसलिए संगम युग पर बाबा ने हम सब बच्चों को अनेक विधियां बताई हैं। अगर भगवान को राजी करना तो उसकी विधि क्या है? सच्ची दिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर दिल के अंदर किसी भी प्रकार की खोट है, कथनी अलग है, करनी अलग है, रहनी अलग है, कुछ कहे कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, भगवान राजी होगा क्या? अगर भगवान को राजी करना है तो अंदर बाहर सच्चे, साफ और सबसे प्यारे लगते हैं मेरे, बाबा कहता मेरे भोले बच्चे, गरीब बच्चे, सच्ची दिल है, कुछ भी है, जितना है तेरा है बाबा, सब कुछ तेरा है, बाबा के आगे समर्पित कर देते हैं, बाबा उसको स्वीकार करके उसको भरपूर कर देता है। लेकिन अंदर चलता है, क्या जरूरत है, क्या करना है, इतना क्यों करूं, सब तो करने वाले हैं, मैंने नहीं किया तो क्या हुआ? तो बाबा कहता तूने विधि को फेल किया, तुमको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। अगर बाबा से आपको सर्व प्राप्तियां करनी है, सब वरदान लेने हैं, तो बाबा के आगे अपनी बुद्धि को समर्पित करो। जितना जिसने अपनी बुद्धि को समर्पित किया, तन मन को समर्पित किया, बाबा कहता है समर्पित हुए तो बाबा आपको, पहले आप बच्चे बाबा को अपना वारिस बनाते और फिर बाबा आपको 21 जन्मों का वर्षा दे देता। तो बाबा से 21 जन्मों का अगर जन्म से अधिकार वर्षा प्राप्त करना है तो उसकी विधि है संगम पर उसको अपना वारिस बना लो। समझ रहे हो मेरी बात को? माताएं समझ रही हो? बाबा को किसने किसने वारिस बनाया, हाथ तो उठाओ देखें तो, बनाया है सबने? अभी आधों ने नहीं उठाया। संगम पर बाबा को वारिस बनाने का मतलब क्या है? कई माताएं बड़ी सच्चे दिल से कहती हैं, मेरे 3 बेटे तो हैं लेकिन पहला बेटा मेरा शिव बाबा है, शिव बालक है। बहुत बुजुर्ग माताएं, बड़ी आयु वाली माताएं जब पहले पहले शुरू शुरू में आती थी ना बाबा के घर में, तो इतनी छोटी पोटली में चावल, उसमें चीनी, एक छोटी सी चुकट पुड़िया, सब चीजें एक ही जगह पैक करके ले आती थी, बाबा को देती, बाबा शिव बाबा के लिए, शिव बालक के लिए आज भोग बनवा देना, बाबा कितना खाएगा है? इसलिए भोग बनवा देना और अपने बाबा के अपने बच्चों को खिला देना। बहुत दिल से, सच्चे दिल पर भगवान राजी हो गया। बड़े प्यार से लेता था बाबा के आगे, ऐसा कोई बच्चा आ जाता था भोला सच्चा, तो बाबा बड़े प्यार से लेता था, अपने पास रख के कहता था भोली दादी को बुला लो भंडारे से, उसी समय बुलाओ, बच्ची ये देखो बाबा के भंडारे के लिए, शिव बालक के लिए ये माता ये चावल लेके आई है, चीनी लेके आई है, भोग बनाने के लिए सब लाई है, तुम जाओ आज खीर सबके लिए बनाना, उसमें मिला देना, सबको मिल जाएगा। अब उसका भाग्य बन गया, दिया इतना सा, लेकिन लिया बाबा से कितना, कितनी दुआएं ले ली। तो अगर बाबा से कोई चीज प्राप्त करनी है तो ऐसे नहीं बाबा दे देगा हो जाएगा। आज प्रकृति का भी एक नियम है, अगर कोई मान लो खेती करने वाला किसान सोचता है देखो धरती माँ बहुत कुछ देती है, अपने आप दे देगी, अपने आप दे देगी क्या? कुछ तो बोना पड़ेगा। आपके पास मान लो 5 एकड़ 10 एकड़ खेत है और कहो नहीं अपने आप उग जाएगा, अपने आप कट जाएगा, अपने आप आ जाएगा, कुछ तो बोना पड़ेगा ना। और समय पर अगर नहीं बोया तो, समय पर पानी नहीं दिया तो, बो भी दिया तो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए संगम युग का जो समय है वो बीज बोने का समय है, इसको बहुत यथार्थ समझना कि संगम युग पर अगर हमने किसी भी प्रकार का बीज बो दिया तो पूरे कल्प के लिए, किस जन्म की तो गारंटी है, लेकिन जिस भावना से, जिस श्रद्धा से कोई ने कोई भी चीज यज्ञ में लगाई, तन लगाया, तन निरोगी बन जाएगा। अगर मन लगा दिया तो मन मनाभो होकर के उसका मन सदा शुद्ध रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे विचार चलेंगे, कभी टेंशन पैदा नहीं होगा, कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर धन लगाया है तो धान्य संपन्न पूरे कल्प के लिए बन सकता है वो। अगर दिल से लगाया, अपना समझ के लगाया है संगम पर, डायरेक्ट जब भगवान आते हैं तो डायरेक्ट उसके कार्य में मदद कर देना, सहयोगी बन जाना, उसको पहचान करके अपना सफल कर लेना, उसका रिटर्न कितना मिल जाएगा। यही बुद्धि चाहिए, यही समझ चाहिए, और इस विधि को यथार्थ समझना है। कई लोगों से ईर्ष्या करते हैं, जलसी करते हैं, इसको सब इतने साधन मिल गए, इसको इतनी सुविधाएं मिल गई, इसको इतनी अच्छी गाड़ी मिल गई, इसको मकान बंगलो मिल गया, मेरे को नहीं, मैं तो इतनी मेहनत करता हूं, मैं तो इतनी कमाई करता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी की भाग्य से रेस मत करो, किसी जन्म में भगवान के नाम पर उसने किया है, कुछ ना कुछ पुण्य किया है, उस विधि को अपनाया है, उसके रिटर्न में उसको मिला है। आप भी करोगे तो आपको भी मिलेगा, जिसने जितना किया है उतना उसको मिला है। इसलिए सभी ध्यान देना कि संगम युग पर हर प्रकार की विधि है, जो इच्छाएं हैं, जो आपको जरूरत है, जो आप चाहते हो, हर मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन वो मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आपको विधियों को यथार्थ समझना पड़ेगा। कोई कहे मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मुझे दुआएं मिल जाएं, मुझे सारा परिवार प्यार देने लगे, सम्मान देने लगे, कैसे मिलेंगी? बोलो विधि, क्या विधि है बहने बताओ? आप देना सीख जाओ। अगर आप एक को दोगे तो आपको 10 लोग देंगे आकर के, ये चीज मांगने वाली थोड़ी है, ये विधि है। अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो भी रिटर्न करेगा। तो हम थोड़ा धैर्यवत रखें, शांत रहें और अपनी तरफ से देना सीखें। बाबा इसलिए अपने बच्चों को कहता है, आप मेरे बच्चे इस संगम पर मास्टर दाता बनना। बड़ी अच्छी विधि बताई है, किसी से भी कोई चीज की लेने की इच्छा नहीं रखना। जो कुछ तुमने बाबा से लिया है, इतना अविनाशी ज्ञान धन मिला है, गुणों का धन मिला है, शक्तियों का धन मिला है, इतना अखुट खजाना बाबा ने अपने बच्चों को दिया है, माला माल बनाया है संगम पर। अगर इस कोई ज्ञान धन का, गुणों का, शक्तियों का चिंतन करे, कितना बाबा ने हम सबको भरपूर किया है, अब हम सबका कार्य है बढ़ाने की। संभालने की विधि क्या है? बढ़ाने की विधि बताओ भाई लोग, दूसरों को बांटना। जितना दोगे, कहते धन दिए धन ना खुटे, बढ़ जाएगा आपका ये ज्ञान धन, अविनाशी धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन। अगर कोई इसको बांटना सीख जाए, मालामाल हो जाएगा। संभालने की विधि क्या है? संभालने की विधि, बढ़ाने की विधि तो बांटना, और संभालने की, जो खजाने मिले हैं हमारे पास रहें, जमा रहें, उसकी विधि है। संभालने की विधि है बार बार चेक करना, चेकिंग बहुत जरूरी है। अगर आप चेकिंग नहीं कर रहे हो, आप समझते हो मेरे पास बहुत कुछ जमा है, तो हो सकता है कहीं कीड़े लग जाए उसमें, कोई घुन लग जाए। कौन सा घुन लगता है ब्राह्मणों के खजाने में पता है? कौन सा घुन लगता है? कौन सा? मैं, ये मैं का जो घुन है ना, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूं, मैं बहुत अच्छा योगी हूं, मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं बाबा ने भरी हैं। जहां भी मैं का अहम आ गया, वहां आपके कितने भी खजाने हैं, वो जैसे दीमक उसके अंदर लग गई, वो खत्म हो जाएगा, उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को हमेशा कहता है, पुण्य कर्म, पुण्य उसको कहते हैं जो बहुत गुप्त किया जाता है, गुप्त दान महापुण्य। ऐसे पुण्य नहीं बन जाता, कहते हमने तो बहुत पुण्य किए हैं। क्या पुण्य किए? एक मंदिर बनवाया और मंदिर के अंदर हमने हर संगमरमर के पीस पर लिखवा दिया, मेरे स्वर्गीय फलाने के लिए, फलाने फलाने की यादगार में है, याद में है। बाबा कहता उसका एक पैसा भी नहीं बना, नाम कमा लिया, कच्चा फल खा लिया, उसकी महिमा हो गई, उसकी कुल की महिमा हो गई, उसके जाति की महिमा हो गई, भाई फलाने फलाने ने मंदिर बनवा दिया, नाम प्लेट लगवा दिया अपनी बड़ी बड़ी, किया जरूर अच्छा काम, लेकिन उसी का रिटर्न उसने नाम मान शान स्वीकार कर लिया। अब विधियां बाबा ने यहां संगम पर क्या बताई? बच्चे इस हाथ से करो, इस हाथ को भी पता न चले। ब्रह्मा बाबा ने खुद करके दिखाया, इतना सब कुछ किया, 14 साल तक बाबा के बच्चे, बाबा की जो कमाई थी लौकिक बाबा की थी, बाबा के साथ एक दो और परिवार समर्पित हुए, इतने दिन तक कहते थे ओम मंडली में पिस्ता बादाम खाते हैं, इतना प्यार से 1400 लोगों की 14 साल पालना हुई। बाबा ने कहीं वर्णन किया है? कई बार कहता है मैं कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ही सब कुछ करता है। लेकिन आपको एक स्लोगन तो सदा याद रहता होगा, नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने। अगर ब्रह्मा बाबा श्री नारायण पद प्राप्त कर रहे हैं तो बिना करने के तो नहीं प्राप्त किया होगा। और वो करने जिस जो इतनी श्रेष्ठ करनी की है, कहीं पर भी उस करनी का वर्णन नहीं किया है, मैंने ये किया है, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए बच्चे मेरे में अटक जाए, शिव बाबा को भूल जाए। कई आत्माएं कुछ करती हैं तो दिखाती बहुत है, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैंने सेंटर बनवा दिया, मैंने मधुबन में इतना दे दिया, मैं ये समर्पित कर दिया, और जहां जहां वर्णन किया वहां वहां उसका शेयर कटता गया, हिस्सा कटता गया। इसलिए अंत में हाथ में आया कुछ नहीं, किया बहुत कुछ, प्राप्ति कुछ नहीं हुई। फिर कहता मैंने इतना किया, मेरे को कोई जानता ही नहीं है, मुझे तो कोई प्राप्ति नहीं होती है, विधि ठीक नहीं है, इसलिए उसको सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए अगर यथार्थ विधि को हमने समझा है, ज्ञान की यथार्थ विधियों को समझने वाली आत्मा संगम युग पर बिल्कुल तृप्त, भरपूर, सब प्रकार से खजानों से संपन्न अपने आप को अनुभव करती है, कहीं भी उसको खालीपन महसूस नहीं होता। अगर कोई को भी बाबा के बनने के बाद भी किसी चीज की कमी महसूस हो रही है तो उसका मूल कारण है उसने विधियों को ठीक तरह से अपनाया नहीं है, विधि पूर्वक वो नहीं चल रहा है। आज क्यों लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों में तो साहूकार लोग ही आते हैं, और मुझे पता है आप सब जानते होंगे ब्रह्मा कुमारीज में 60% से भी अधिक लोग गरीब और गांव के लोग हैं, साहूकार कहां हैं इतने। हम मधुबन में आप देख लो 150-200 लोग समर्पित हैं, शायद ही 2%-1% कोई शहर से आया हो, सब गांव के लोग हैं और सब गरीब घरों के ही हैं, समर्पित हैं। और कोई देखता है तो बहुत राजाई ठाट है, कितने अच्छे ड्रेस है, कितने अच्छे रहते हैं, हर प्रकार की भरपूरता है, संपन्नता है। गांव के गरीब बच्चों को भी देख करके लोग कहते हैं कि कितने साहूकार जैसे हैं, कैसे बन गए साहूकार, क्योंकि उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके खर्चे जो बहुत व्यर्थ जा रहे थे, दिखावे में जा रहे हो, तो सब बचा लिया। लोग कमाते हैं, कभी कभी मैं कहता हूं सरकार सोचती है कि मैं इनको इतनी अच्छी खेती कराऊं, इतना अच्छा सब कराऊं, इनकी डबल आमदनी हो जाए। डबल आमदनी कर लिया और शराब पीना छोड़ा नहीं तो कहां गई आमदनी। जब तक उसका चरित्र अच्छा नहीं बनाया आपने, जब तक उसके चिंतन को अच्छा नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, तब तक पैसा तो उसको पाप की तरफ ढकेल रहा है। बाबा ने अपने आप बच्चों को ये नहीं कहा मैं तुमको सब फ्री दे देता हूं, पैसा दे देता हूं। बाबा ने श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाया, हमारे चिंतन को, हमारे चरित्र को ऊंचा उठाया। और जिस आत्मा ने ब्राह्मण बनकर के अपने चरित्र पर ध्यान दिया, अपने चिंतन पर ध्यान दिया, वो आत्मा घर ग्रस्त में रहते हुए इतना सुखी रहती है, इतना भरपूर रहती है, कभी वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती और कभी किसी से कर्ज नहीं लेती। आप सभी ध्यान देना, इस ब्राह्मण जीवन में हम बच्चों को बाबा की श्रीमत मिली हुई है, कर्ज लेना मर्ज है, किसी से भी कर्ज नहीं लेना। दो रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जितना है उतनी चादर फैलाओ, उतने में रहो। ये उसको देखा, उसको देखा, कई लोग क्या करते हैं भाई, इसने अपने परिवार के लिए ये किया, अपनी बेटी की शादी में इतने लाख रुपया खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे भी करना तो पड़ेगा, दिखावा, फिर कर्जा लेंगे, फिर वो मर्ज बन जाएगी, रोज बैठेंगे, रोज फोन आएगा, मेरा पैसा कब दे रहे हो, योग लगेगा। इसलिए सब ब्राह्मण बच्चों को बहुत ध्यान देना है, जितना एक स्लोगन बाबा का याद करना, कम खर्च बाला नसीन। साकार ब्रह्मा बाबा ने जितना यज्ञ को आगे बढ़ाया अपने होते, बहुत कम से कम खर्चे में बहुत अच्छे से अच्छा कार्य हो, कार्य अच्छा हो, खर्चा कम हो, हमारी स्थिति बहुत अच्छी ऊंची बन जाए, उसके लिए चिंतन बड़ा अच्छा हो, चिंतन टू मच ना हो, बोल अधिक ना हो, कर्म में श्रेष्ठता हो, तो अपने आप हमारा भाग्य ऊंचे से ऊंचा बन जाएगा। तो विधियां, हमारे योग की विधियों को भी अगर यथार्थ आप समझ जाएं, तो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे उन्होंने स्थूल में क्या प्राप्त किया, वो स्थूल में सिद्धि प्राप्त कर लिया, वो आग पर चल के आपको दिखा दिया, आपको लगा वाह बहुत सिद्धि पुरुष है, चादर बिछा दी, इस पर पैसा डाल दो सब लोग, कमाई का साधन बना लिया उसने। बाबा ने हम सबको क्या सिद्धि दी, इस विकारों की जलती हुई दुनिया में रहो, इस आग के बीच में रहते आप आग को सहज पार कर लो, ये विकारों की आग न लगे। उसके लिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया आप आत्मा हो और आप अनादि और आदि स्वरूप में परम पवित्र आत्मा हो। बार बार चिंतन करो कि मेरा जो आदि और अनादि स्वरूप है वो बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। मैंने पाठ बजाते बजाते इस समय इस कलयुग में अंत में हम हैं, अब हम फिर से वहां जाने वाले हैं, इसलिए इस विकारों की आग में रहते हुए, घर ग्रस्त में रहते हुए हमें वो आग जला नहीं सकती, इस आग पर हम चलना सीख गए हैं। सीख गए हैं सभी कि नहीं, अभी भी आग लग जाती है। बाबा ने विकारों की दुनिया में कीचड़ में रहते हुए वे कमल बना दिया। अगर कमल हैं तो न्यारे हैं, प्यारे हैं, बैलेंस सिखा दिया बाबा ने। सबकी ब्लेसिंग लेने का आधार, सबकी दुआएं मुझे मिले, सबकी आशीर्वाद मिले, बहुत सुंदर विधि बाबा बताता है, विधि है, ऐसे नहीं मिल जाती दुआएं। अगर परिवार में सबकी दुआएं लेनी है, अपने कारोबार के बीच में अपने साथियों की सबकी दुआएं लेनी है, तो ध्यान देना ब्लेसिंग्स का आधार बैलेंस है। जो आत्मा बहुत संतुलन से चलती है, बैलेंस माना संतुलन, कहीं अति प्यार है, कहीं एकदम न्यारे हो गए, किसी को दोस्त बना लिया तो उसके पीछे अपना समय दे रहे हैं, और किसी से वैर रख लिया तो उसे किनारा करके चल रहे हैं, ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे। बाबा ने अपने बच्चों को आशीर्वाद, दुआएं लेने की विधि बता दी। बच्चे हर एक के साथ समान व्यवहार रखो, प्यारे भी बनो, लेकिन पहले देह अभिमान से न्यारे बनो। जितना जो आत्मा देह अभिमान से न्यारी रहती है, वो सबसे पहले प्रभु की प्यारी बन जाती है। प्रभु से प्यार मांगने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे प्यार का अनुभव ही नहीं होता। बाबा प्यार का सागर है, प्यार लुटा रहा है बच्चों को, और हम बच्चे कई बार उस प्यार से वंचित हैं। उसका मूल कारण है हम देह अभिमान से न्यारे नहीं बन रहे हैं। जिस दिन आत्मा इस देह अभिमान से न्यारे का अनुभव करेगी कि मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, इस शरीर को चला रही हूं, न्यारेपन का आप अनुभव करके देखो, 10 मिनट भी शरीर से न्यारे होके बैठो, बाबा के प्यार की वर्षा होने लगेगी। अनुभव करोगे प्यार के सागर में मैं समा गया। प्यार मांगो मत, लोगों से भी प्यार मांगना नहीं, लेकिन आप अपने देह भान से न्यारे रह करके समान रूप से सबको प्यार दो, सबसे न्यारे भी रहो, प्यारे भी रहो, सबको समान दृष्टि से देखो, आप सबके प्यारे बन जाएंगे, सबकी ब्लेसिंग्स ले लेंगे। ये कितनी सुंदर सुंदर विधियां बाबा बताता है। कई बार मैं कहता हूं इनको सब ब्राह्मणों को एक लिस्ट रखनी चाहिए अपने पास, मुरली से ही नोट करो, कोई देगा तो आप भूल जाएंगे। एक मुरली से कम रोज 15 विधियां सीख लो। ये विधि अगर हम अपनाएंगे तो ये सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी, ये विधि पर चलेंगे तो ये मिल जाएगा। यथार्थ योग की विधियां, जैसे बाबा कहता बच्चे एक सेकंड में आप इस शरीर से न्यारे होकर के अपने अव्यक्त वतन में आ जाओ, अपने मूल वतन में आ जाओ। अब वो सिद्धि प्राप्त करते हैं थोड़े समय शरीर से कहीं उड़के दिखा देवे, हवा में उड़के दिखा देवे, वो सिद्धि है क्या? अरे बाबा ने इतनी बड़ी सिद्धि दी है, हम बैठे एक जगह हैं, कोई खर्चा नहीं है, कोई साधन की जरूरत नहीं है, और अभी अभी यहां बैठ करके मधुबन के 4 धाम की सैर करके आते हैं, अभी अभी हम मूल वतन सूक्ष्म वतन की सैर करके आते हैं, अभी हम किसी स्थान पर पहुंच सकते हैं। बाबा ने अपने बच्चों को इतना सुंदर अच्छा विमान दिया है, मन का उड़न खटोला दिया है, लेकिन कभी मन के उड़न खटोले पर बैठते ही नहीं है, मिट्टी की ड्रेस उतारते ही नहीं है। अगर हम बाबा से अव्यक्त मिलन करना चाहते हैं, कई कहते हैं बाबा भी नहीं आता मधुबन में, इधर आता उधर आता। अरे बाबा अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर भटकेगा जाके रखे क्या? बाबा अपने घर में ही है, अपने घर में बच्चों का अनुभव कराता है, मिलता है। लेकिन उसने कितनी बार अव्यक्त में आकर के कहा है बच्चे ये साकार मिलन कब तक? जब तक गुलजार दादी का रथ ठीक रहा बाबा आए, लेकिन बाद में बाबा ने अपने बच्चों को जो सिखाया अव्यक्त स्थिति में रहने की विधि, जो जितना अव्यक्त स्थिति में रहते हैं वो अव्यक्त मिलन का सुंदर अनुभव अभी भी करते हैं। और बाबा कहते हैं उसके लिए कोई टाइम बंधा हुआ नहीं, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा। सामने आते थे तो बाबा 5-10 मिनट मुश्किल से किसी से मिलते थे, 2 घंटे में हजारों बच्चों से मिल लेते थे। अभी कहते 24 घंटा बच्चों के लिए दरवाजा खुला हुआ है, आप अव्यक्त वतन में आके देखो, अव्यक्त मिलन मनाओ। अब उसके लिए कोई अपने व्यक्त बातों से, व्यर्थ बातों से मुक्ति नहीं करता अपने, अव्यक्त मिलन का अनुभव कैसे करेगा? सिद्धि प्राप्त करना चाहता लेकिन विधि अपनाता नहीं। सभी विधि पूर्वक योग में बैठे थे, विधि पूर्वक बैठे थे कि ऐसे गीत सुनने में लगे थे? तो बाबा ने हमें योग की बड़ी अच्छी अच्छी विधियां बताई हैं, और यथार्थ रीति से जो योग अभ्यास करते हैं वो बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। संकल्प भी सिद्ध होते हैं, बोल भी सिद्ध होते हैं, कर्म भी सिद्ध होते हैं। जो कुछ सोचेंगे होने लगेगा, जो बोलना चाहें बोल देंगे हो जाएगा। कई ऐसे अच्छे अच्छे बाबा अनुभव कराता है, लेकिन उसका अहंकार ना आ जाए। नहीं तो कहते हैं खुदाई, जो खुदा की देन है उसको अपना समझ लिया तो बहुत बड़ा पाप बन जाएगा। इसलिए कभी भी हम सिद्धियों का अहंकार न करें। लेकिन बाबा ने हम सबको कहा है बच्चे कोई भी कार्य की सिद्धि आप बच्चों के हाथ में मैं देता हूं, प्राप्त हो सकती है, विधि ठीक रखना। जैसे आज आप सेवा पर जाते हो, सेवा पर या किसी से कोई कार्य आपको कराना है, क्या विधि है? क्या विधि है? किसी से भी कार्य कराना, वो नहीं करने वाला व्यक्ति है और आप उससे ही कराना चाहते हो, क्या विधि है? आपको एक विशेष, आज जो विदेश सेवाओं की वृद्धि हुई उसकी विधि बताता हूं। जब ये विदेश सेवाएं प्रारंभ हुई मैं मधुबन में आ गया था, 71 की बात कर रहा हूं। जब बाबा के बच्चों को तैयार किया गया विदेश सेवा के लिए, निमंत्रण मिला लंदन से, जयंती बहन जो है ना उनकी मम्मी ने निमंत्रण दिया था, रजनी बहन ने, कि लंदन में सेवाएं शुरू करो, हमारे घर से शुरू करो। यहां पर ग्रुप बना और विदेश जाने के लिए 6-7 बहनों को, भाइयों को तैयार किया गया कि आप सेवा शुरू करो। लेकिन जाने के पहले एक क्वेश्चन आया कि भारत वाले तो बहुत अच्छी भारतीय संस्कृति को मानते हैं, समझते हैं, हमारा ज्ञान भारतीय संस्कृति पर आधारित है, अब वो विदेश की कल्चर में रहने वाले विदेशी लोग, खास उस भूमि पर जन्म लेने वाले अन्य धर्मों में चले गए आत्माएं, इस ज्ञान को कैसे समझेंगे? वो सवेरे नहीं उठती हैं, अमृत वेला कैसे करेंगी? वहां बहुत ठंडी पड़ती है, उनका खान पान बहुत नेगेटिव है, तामसिक है, शराब के बिना, मांस के बिना वो नहीं रह सकते हैं। बहुत सारी बातें थी, हमारे ज्ञान की इतनी ऊंची धारणाएं, ये लोग अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, क्या होगा? तो क्वेश्चन थे, कई प्रकार के ऐसे प्रश्न थे, और वो प्रश्न लेकर के ही अंदर अंदर मीटिंग कर रहे थे, अब कैसे सेवा होगी, क्या करेंगे क्या करेंगे। तो बाबा आए, बाबा को छुट्टी लेने के लिए बाबा के पास आए सभी, तो बाबा ने उनसे एक प्रश्न पहले ही कर दिया कि बच्चे आप जहां जा रहे हो क्या वहां की सेवा की है? अब ये सब सोचने लगे कि बाबा सेवा करने जा रहे हैं, अभी तो सेवा की कहां है। बोला नहीं बच्चे गलती कर रहे हो, आप जिस स्थान पर सेवा के लिए जा रहे हो पहले से अपनी बुद्धि के विमान से, अपने श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों से उस स्थान पर, उस स्थान को इमर्ज करके वहां सकास दो, वहां लाइट दो। और ये संकल्प करो कि हम ब्राह्मणों को जहां बाबा भेजेगा, जहां पर हमारे कदम पड़ेंगे, वहां जरूर बाबा के लाल छिपे हुए निकलेंगे। बहुत पॉजिटिव संकल्प करके, बहुत शुद्ध संकल्प करके जरूर निकलेंगे। और उसी संकल्प से जब गए तो कितनी आत्माएं विदेश की, उस कल्चर में पली हुई आत्माएं बाबा के बच्चे बने। हम कहते हैं हमारे भारतवासी अभी ठंडे हैं। अमृत वेले अगर कहा जाए आज संगठन में योग करो आकर के, किसी शहर में हम जाते हैं कहते हैं भाई साहब आए हैं योग कराने के लिए, आप आएंगे? 5-10 मुश्किल से आते हैं। लंदन के अंदर मैं 2 बार गया हूं, अमृत वेले के योग में चारों तरफ के लोग गाड़ी ले लेकर के आकर के अमृत वेला करते हैं। इतनी ठंडी के बीच में, इतने दूसरे प्रकार के वातावरण में भी अमृत वेले का योग करने के लिए क्लास में आते हैं, मुरली सुनने क्लास में आ रहे हैं अमृत वेले के। और आज लॉकडाउन हुआ, कितने लोग आलसी बन गए होंगे, क्लास में नहीं आते हैं। हमारे बच्चे मना करते हैं, हमारे फलाने मना करते, बहानेबाजी। अगर संकल्प में शक्ति है तो क्या नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा विदेश के कल्चर में रहने वाली आत्माएं आज 750 अगर दादी जाती थी तो 750-800 भाई बहनों का क्लास लंदन में होता था। और विदेशी अधिक, अपने भारतवासी भी आधे हैं, आधे ज्यादा ही भारत के हैं, लेकिन विदेश के कल्चर में रहने वाले भी बहुत सारे भाई बहन हैं। हर नियम का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, अमृत वेले 4 बजे किसी दिन भी मिस नहीं करते हैं, मुरली क्लास कभी मिस नहीं करते। कैसे सिद्धि हुई, ये सिद्धि कैसे मिली है? एक शुद्ध संकल्पों के आभा मंडल से मिली है। हम कहें ये स्थान तो बहुत बंजर है, बहुत कठिन है, यहां सेवाएं नहीं हो सकती हैं, बाबा कहते तुम पहले अपने कमजोर संकल्प लेके जा रहे हो, कैसे होगी सफलता? क्यों नहीं होगी? जहां हम जाएंगे, जहां बाबा के बच्चे रहेंगे, उनके शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन से कई आत्माएं जो हैं आपके धर्म की, आपके कुल की, ब्राह्मण जाति कुल की हैं, वो सब अपने आप आ जाएंगे। कहां जाएंगे? हम केवल वहां कदम रख दें, कदम कदम में बाबा कहता आप बच्चों के पदम समाये हुए हैं, लेकिन कदम उठाने की विधि क्या है? बाबा की याद। बाबा की याद में जो कदम उठाया जाएगा उसमें पद्मों की कमाई जमा होगी। ऐसे कदम कितने उठा रहे हो आप? लेकिन एक एक बाबा का बच्चा पद्मा पद्म पति तब है जब वो कदम कदम पर हर कर्म में बाबा करावन हार करा रहा है, बाबा करावन हार करा रहा है, मुझे उसने निमित्त रखा है, मैं कर रहा हूं, जहां आ गया वहां बाबा दूर हो जाएगा, विधि गलत हो जाएगी। इसलिए यथार्थ विधि पूर्वक अगर कोई कर्म किया जाए, याद या सेवा, जो 2 विधियां ही बाबा ने आज बताई हैं, याद और सेवा दोनों अगर कोई विधि पूर्वक कर रहा है, उसे सफलता न मिले, उसे सिद्धि न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर हो रहा है किसी जगह पर तो कहीं न कहीं उसने श्रीमत में मनमत मिक्स की है, कहीं न कहीं उसने नियम मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए उस सेवा केंद्र की वृद्धि और विस्तार नहीं हो रहा है। इस बार हमें बहुत अटेंशन देना चाहिए, हर एक विधि को नोट करके रखो, कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। अगर कोई कारण बन रहे हैं तो उसका निवारण भी है, और निवारण है शुद्ध श्रेष्ठ वृत्तियों से वायुमंडल बदलना। अगर निमित्त आत्मा की वृत्तियां अनासक्त हैं, अगर किसी भंडारी में कमाता है उसका मूल कारण, कहीं भंडारी नहीं सफल हो रही उसका मूल कारण, विधि क्या है भंडारी भरपूर करने की? बहुत बड़े दिल से सेवा करने वाला। आज दादियों ने भंडारा जो भरा है, जो आप सब प्रैक्टिकल देख रहे हो, ऐसे नहीं भर गया है, विधियां अपनाई उन्होंने, किसी से मांगा नहीं, किसी से कहा नहीं तुम करो, लेकिन वो अगर बाबा के घर में आए हैं, उनकी प्यार से सेवा की है, उनकी खातरी की है, उनको हर प्रकार से पालना दी है, और पालना के रिटर्न में भंडारा भंडारी भरपूर हुई। हम कहते हैं हमारी भंडारी खाली रहती है, अरे कभी ब्रह्मा भोजन ही नहीं खिलाया होगा, कभी प्यार से भोग बना के नहीं खिलाया होगा, अगर खिला करके देख लो, अगर नहीं 2-4 बार, कई जगह पर होते हैं बहुत मनहूस कंजूस लोग होते हैं, लेकिन वो बोझ चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर, विधि तो यही है कि आप प्यार से, शुद्ध संकल्पों से, निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा करो, सबको प्यार से पालना दो, ज्ञान रत्नों का दान करो, अपने आप सबको आएगा मुझे भी कुछ करना चाहिए, जो मैं कर सकता हूं वो तो करूं। और अगर इसमें भी कोई अलबेलापन है, तन अगर अच्छा है और कहता कर लेंगे, आप सब इस बात को अंडरलाइन करना, मैं बहुत ध्यान रखता हूं, आज मेरा तन ठीक है और आज मेरे आगे कोई सेवा है, मैं कहता हूं कर लूंगा, और कल कुछ हो गया तो सेवा लेनी पड़ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर तन की शक्ति है तो बाबा के कार्य में लगा दो, अपने आप तन को और शक्ति बाबा दे देगा और ये निरोगी काया बन जाएगी। विधि है लेकिन लगना पड़ेगा, पहले आपको कर्मणा सेवा करनी पड़ेगी यज्ञ की, और जिस आत्मा ने यज्ञ की प्यार से कर्मणा सेवा की है उसका तन एकदम स्वस्थ है, मस्त है, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है। लेकिन दिल से अगर कर्मणा सेवा की है तो यज्ञ पिता को प्रसन्न कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। आप इस बात को नोट करना, जिस पिता ने ये यज्ञ की रचना की वो कपल मुनि है। कपल मुनि क्यों कहते हैं, कपल क्यों कहते हैं भाई, जोड़ा है वो, शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए कपल मुनि है वो, और उसकी बेटी जो है वो कामधेनु माँ है। यज्ञ माता जो है वो कामधेनु है और यज्ञ पिता कपल मुनि है। अगर उसको किसी ने प्रसन्न कर लिया उसके यज्ञ की सेवा करके, तन दे करके, मन से, धन से, और वो प्रसन्न हो गया, तो जो भगवान को प्रसन्न कर ले और आदि पिता और आदि माता को प्रसन्न कर ले, उसकी सब मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। मन इच्छित फल यज्ञ देता है, लेकिन विधि ठीक है तो, मांगने से नहीं। कभी भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा, मैं देखता हूं कई सेवा केंद्र इतने भरपूर रहते हैं, दादी ने विदेश की सेवाओं को अगर इतना बढ़ाया, जानकी दादी ने, उसका मूल कारण जो मैंने नोट किया, जिस दिन से वहां पांव रखा उस दिन से लक्ष्य रखा, अगर भंडारी में कोई 80 पौन मास में आएगा तो 40 बाबा के घर में जाएगा। ऐसे नहीं हमारे को जरूरत है, हमें तो बसों में चलना पड़ता है, हमारे पास ये साधन नहीं है, हम तो पहले अपने घर को भर लें, मधुबन को बाद में देखेंगे। दादी ने कभी इस विधि को नहीं सुना, अभी तक मैं नहीं सुना, लास्ट तक भी उनकी ये विधि थी, लंदन के अंदर जितना कुछ आता है उसका आधा मधुबन में आना चाहिए, और उस विधि के आधार से आज कितनी सिद्धियां प्राप्त हैं, कितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बने हैं, कितने बड़े बड़े सेवा केंद्र बने हैं। मांगा थोड़ी किसी से, विधि ठीक रखी। तो हम सब बाबा के बच्चे सीखें ये बात कि अगर हमने बाबा के यज्ञ में तन लगाया है, मन लगाया है, धन लगाया है, समय दिया है, संकल्प दिए है, श्वास दिए है, तो उसके लिए बाबा रिटर्न करने के लिए बंधा हुआ है। तो हम सब ध्यान देंगे, योग की विधि यथार्थ है, तीनों लोकों का सैर करो, मन से एकदम डिटैच होकर के रहो, सब प्यारे हैं लेकिन कोई को विशेष प्यारा नहीं बना देना। जो आत्मा लगाव और झुकाव से मुक्त है वही परमात्म प्यार का अच्छा अनुभव कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु से हमारी विशेष अटैचमेंट है वो प्रभु प्यार से सदा के लिए वंचित है। प्रभु प्यार अगर प्राप्त करना है सच्चे दिल से, उसको हम याद करें और हमें साथ न दे, उसके प्यार का, शक्ति का अनुभव न हो, उसका कारण है कहीं न कहीं हम किसी न किसी देहधारी में अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। इसलिए इन सब विधियों को सीखो, अच्छी तरह से नोट करो, और ये विधि पूर्वक चलने वाली आत्मा संगम पर ही अनुभव करती है कि 21 जन्मों में एक जन्म ये भी हमारा है, मिक्स है। सतयुग और त्रेता के तो 20 जन्म है, संगम युग का जो एक जन्म है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इसको बाबा कहता है हीरे तुल्य जन्म है, वो तो गोल्डन एज हो जाती। संगम युग इतना महान डायमंड एज, उसमें भगवान की डायरेक्ट पालना मात पिता के रूप में हम बच्चों को मिल रही है, और इसमें भी कोई कहे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरा ऐसा है, माना उसने वास्तव में अपने इस भाग्य को समझा ही नहीं है। भाग्य विधाता जब डायरेक्ट भाग्य लुटा रहा है और हमने उस भाग्य को नहीं अपना पाया, माना हमने किसी बात को समझा नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। अब जब भाग्य विधाता अपने बच्चों के हाथ में कलम खींच दे रहा है, बच्चे तुम अपना ही भाग्य नहीं पूरे विश्व का भाग्य बना सकते हो, तुम्हारे हाथ में मैं कलम देता हूं, है सबके हाथ में है भाई लोग, समझ रहे हो है कौन सी कलम है? क्या कोई कोई बोला सुनाई नहीं देता है? हिम्मत की नहीं, श्रेष्ठ कर्म की कलम। जितना श्रेष्ठ कर्म हम बाबा के यज्ञ में कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म माना जिस कर्म में कर्तापन का भान नहीं है, मैं कर रहा हूं मैंने किया, वो कर्म श्रेष्ठ नहीं रहेगा। कर्म बहुत से हैं लेकिन करने वाला बाबा करा रहा है, मुझे निमित्त बनाया है, जिसने निमित्त भाव से बाबा के यज्ञ में कोई भी कर्म किया है वो कर्म श्रेष्ठ कर्म है। और ऐसे श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्मों को अपनाने वाली आत्मा भाग्यवान है और वो खुद और दूसरों का भाग्य बना सकती है। तो हम सब भाग्य विधाता के बच्चे हैं, वरदाता के बच्चे हैं, हम अपनी सब शक्तियों को विधि पूर्वक यूज करें। श्रेष्ठ संकल्प की विधि, कहीं भी किसी से कार्य कराना हो तो ध्यान रखना, अगर कोई कहे फलाना ऑफिसर तो बड़ा गुस्से वाला है, वो तो किसी का काम करेगा ही नहीं, बिना रिश्वत के ही नहीं काम करता है, और हम वही संकल्प लेके वहां जाए फाइल लेकर के कि वो तो है ही ऐसा, कुछ तो देना पड़ेगा, और हम ऐसे काम कराना चाहें तो करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो भर गया, वो व्यक्ति है ही ऐसा, बड़ा क्रोधी है, बड़ा स्वार्थी है, बहुत लोभी है, बहुत भ्रष्टाचारी है, और वो व्यक्ति के पास मुझे काम कराना है। अब मेरे मन के विचार जो नेगेटिव हैं पहले उसके ओरा को खत्म कर रहे हैं, उसके विचारों को गलत कर रहे हैं। अगर हम कहें नहीं है तो हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, हम तो भगवान की सेवा के लिए निमित्त बने हुए हैं, ये जरूर करके देगा, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसी से करवाना है, अपने आप करके देगा आप। लेकिन संकल्प में शक्ति, संकल्प साधारण नहीं करना, श्रेष्ठ संकल्प। कहते हैं भगवान ने तो संकल्प से नई सृष्टि की रचना कर दी, ब्रह्मा ने नई सृष्टि रची संकल्प से, हम उसके बच्चे एक छोटी छोटी बात के लिए व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, साधारण संकल्प में अपनी शक्ति गंवा रहे हैं। बाबा कहता है संकल्प की शक्ति को पहचानो, बोल की शक्ति को पहचानो। कई बोलते रहते कोई अर्थ ही नहीं उसके अंदर, अरे बोल एक बहुत बड़ी एनर्जी है, आप जो बोल दो दूसरों के लिए वरदान बन जाए, महावाक्य है सत्य वचन। अब सत्य वचन बोलने वाला व्यर्थ बोलेगा तो क्या होगा? आज माताएं अगर अपने बच्चों कह दें ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो बदलेगा ही नहीं, कई ऐसे कह देते हैं हमारा पति तो रावण जैसा है, राक्षस है, वो बदलेगा ही नहीं। अब आप ही ऐसे संकल्प कर रहे हो तो बदलेगा कैसे? आप पवित्र आत्माएं हो, आपने संकल्प किया है, आपको ज्ञान मिला है, आप बाबा के बच्चे बने हो, आपके संकल्पों में क्यों आता है बदलेगा नहीं? जरूर बदलेगा, मैं बदल के दिखाऊंगी इसको, इसको योगी बना के दिखाऊंगी, ये संकल्प आना चाहिए। उसको मैं बहुत प्यार से भोजन खिलाऊंगी, बहुत योग युक्त बन करके उसको दृष्टि दूंगी, उसके लिए अमृत वेला करूंगी, वो आत्मा बाबा की जरूर बनेगी, उसका सहयोगी मुझे बनाना ही है, करके देख लो। आज नहीं तो कल, भले एक दो महीना चार महीना लग जाए, लेकिन आपके शुद्ध संकल्पों से वो आत्मा आपकी सहयोगी बन जाएगी। पवित्र संकल्प, ये तो बदलेगा ही नहीं, तो आपने ही वरदान दे दिया, श्राप दिया या वरदान मैं नहीं जानता, जरूर बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? भगवान इस सृष्टि पर आया, हट्टी एक ही है, कहां जाएगा ये? इस निश्चय के आधार से, इस भावना के आधार से बाबा को साथी बना करके संकल्प करो। एक जगह एक बांधेली माता मेरे को मिली, मैं एक जगह क्लास कराने गया था, बहुत मुश्किल से छूट के आई थी घर से भाग करके, भाई साहब एक मिनट मिलना, हमने क्या करना, मैं गया अलग से मिला उससे, कहती भाई जी मधुबन की टोली दे दो। तो मैंने उसको दिल खुश, मिठाई थी मेरे पास, मैं देने लगा, कहती ये नहीं चाहिए, कौन से चाहिए, मधुबन का तोसा दे दो, तोसा बहुत प्रसिद्ध। तोसा तो मैं नहीं लाया हूं, चलो सेंटर पर होगा मैं देखता हूं। हमने कहा तोसा और दिल खुश में क्या अंतर है, क्यों ऐसा मांग रही हो तुम? कहती तोसा जो है ना उसको मैं चाय में घोल करके उसको पिला दूंगी, वो सुधर जाएगा, और दिल खुश मिठाई को मैं चाय में कैसे डालूंगी, फट जाएगी, इसलिए मुझे तोसा चाहिए और मैं उसको बदल के रहूंगी, आप मुझे बाबा की यज्ञ का तोसा दे दो। ऐसी माताएं होती हैं, देख लो भावना उनकी, श्रद्धा कैसी है। और इतने प्यार से वो लेके गई, इतनी भावना से लेके गई उसके मन को, बुद्धि को, ऐसे ही तो चेंज करना है। कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, आप सोच सोच करके और उसको खराब कर रहे हैं। इसलिए योग का प्रयोग करने की विधि है शुभ भावना संपन्न संकल्प। ऐसे मनसा सेवा नहीं होती, मैं तो बहुत मनसा सेवा करती हूं, मैं तो 21 दिन से उसको किया है, स्वार्थ भाव से किया है। 21 दिन क्या, कितने मास कर लो नहीं होगा। अगर उसके अंदर स्वार्थ मिक्स है, अपनापन मिक्स है, मैंपन मिक्स है और अंदर से तो बदलेगा ही नहीं, तो आप कितने भी प्रयोग करो कभी नहीं बदलेगा। अगर ये एक शुद्ध संकल्प है, शुभ भावना संपन्न संकल्प, भाव और भावना, अगर वो गलत भाव से भी बोल रहा है तो बाबा कहता है उसके भाव को समझ के उसकी भावनाओं को चेंज कर दो। ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही हमेशा बेइज्जत करता है, गालियां देता है, कुवचन निकालता है, ऐसे ऐसे संकल्प करके नहीं। ये भी हमारे को बाबा ने परसों कहा था, सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहा है, इसके लिए मैं उल्टा नहीं बोलना सोचना है। तो ये सब विधियां बाबा ने बताई हैं। बच्चे इस भावना से अपने संकल्पों को बहुत पवित्र रखो, शुद्ध रखो, शुभ भावना से श्रेष्ठ रखो, संपन्न रखो, तो आपके इस शुभ भावना के संकल्प से सामने वाली आत्मा अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। ये है योग के यथार्थ विधि पूर्वक प्रयोग। होगा ही नहीं, सोच ही नहीं सकते। कोई हमें कहता है, मान लो आज जैसे कहते हैं, हमारे योग की शक्ति से हमारी खेती हो रही है। कैसे हो सकती है, ये तो संभव ही नहीं है। आज कितने कीड़े लग रहे हैं, कितनी बीमारियां आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है, कई लोग प्रश्न करते हैं। प्रयोग करो, पहले भावना तो रखो, शुद्ध संकल्प तो करो, योग का दान तो करो। रिजल्ट पहले ही से आउट क्यों कर रहे हो, नहीं होगा, जरूर होगा। हमारे शुभ संकल्प में शक्ति है, और अगर नहीं है, आप प्रयोग करके अपने कमरे में, अपने घर में, एक गमले के अंदर तो किसी पौधे को लगा के देखो, एक सेंटर के ऊपर एक चीकू का झाड़ था, उसमें फूल आते थे, फूल आते थे और थोड़ी देर के बाद वो झड़ जाते थे, माना उसमें फल नहीं लगते थे। तो आने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट, टीचर को कहने, दीदी इसको काट दो, इसकी जगह पर कोई दूसरा पौधा लगा देते हैं। कहती, नहीं भैया, ये बहुत अच्छा पौधा है, मैं इसको काट तो नहीं सकती, अभी आएगा, एक दिन आएगा। कहती, उसके बाद वो जब चला गया तो मैंने उस पौधे से बात करना शुरू कर दिया, देख तेरे काटने की तैयारी हो रही है, तुम सुधर जा, तुम मुझे फल दे दे। बहुत प्यार से बात किया, बहुत प्यार से। अब कहती है, अमृत जो होता है ना भोग का, वो डाल दिया उसमें जाकर के, वो बहुत भावना से उसको बहुत प्यार से सहलाती हुई, काट देंगे तेरे को, कोई वैल्यू नहीं, भगवान के घर की छत्र छाया बना हुआ तुम, इतना अच्छे पौधा, हरा भरा है, फूल आते हैं, फल क्यों नहीं देता है। बस ऐसे प्यार से बातें करती रही, कहती इतने अच्छे अच्छे फल लग गए उसमें आकर के। अरे बातें किया और फल लग गए, भगवान से बातें किया, पौधे से बातें किया, अब विधि पूर्वक अपना लिया, उसको सिद्धि मिल गई। अब कहे ऐसे कैसे हो गया, अब सब आके स्टूडेंट पूछ रहे हैं, दीदी आपने इसमें क्या डाला, कौन सी खाद डाली। कहते कोई खाद नहीं डाली, सुख भावना की खाद डाल दी, योग की खाद डाल दी। है शक्ति संकल्प में, लेकिन उसका सही प्रयोग न होने के कारण हमें सिद्धि नहीं मिलती है। तो आप सब बाबा के बच्चे सिद्धि स्वरूप हो, आपके संकल्प सिद्ध हों, बोल सिद्ध हों, कर्म सिद्ध हों, जो भी है वो सिद्धि प्राप्त हो, उसके लिए श्रीमत की विधियों को भूलना नहीं। ठीक है, ओम शांति।